सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि आपको प्रेजेंटेशन के साथ साथ ये भी बताना चाहिए जय भाई ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की और इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिल जाए तो उसके बाद हमने क्या कहना है। अब मेरी जो गुफ्तगू होगी वो मेरी प्रेजेंटेशन पेश कर रही होगी इन्फॉर्मेशन पर कि इन्फॉर्मेशन आने के बाद हमें उसे पढ़ना किस अंदाज से और उससे नतज किस तरह हासिल करना है, क्योंकि पॉलिटिकली हम देखते हैं कि गुजस्ता 20 साल से हमारी एक्टिविटीज न होने की वजह से हमारे नौजवान और हमारे बुजुर्ग सारे इलेक्शन को टेलीविजन की हद तक या आपस में शेयरिंग की हद तक गुफ्तगू की हद तक तो रहे हैं, लेकिन फिजिकली वो इन्वॉल्व नहीं रहे। हो सकता है हम में से कुछ दोस्त ऐसे हो जिन्होंने सियासी एतमाद से कोई एक्टिविटी की हो, मतलब उसे ये पता हो कि ये जो पर्चियां बैठे बनाते हैं इलेक्शन ऑफिस में वो क्यों बनाते हैं। हो सकता है हमारे कुछ दोस्त जानते हो कि इनकी अफादियत क्या होती है, हो सकता है कुछ दोस्त ये जानते हो कि पूरे पूल में जो हमारा एक एजेंट बैठा होता है वो क्या करता है, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है, या कैंडिडेट को किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है, या एक पॉलिटिकल वर्कर को किस अंदाज से वर्किंग करनी चाहिए कि वो अपने कैंडिडेट की सपोर्ट कर सके। ये वो मराहल है। ये हमारा इंशाल्लाह जो दूसरा सेशन होगा जो ट्रेनिंग सेशन रखेंगे हम इंशाल्लाह उसमें ये चीज बता देंगे, लेकिन फिलहाल हम जो कर रहे हैं वो इस पर बेस कर रहे हैं कि हमारे पास डेटा अगर आए तो हमें उसे किस तरह एनालिटिकल स्टडी करना है, उसको पढ़ने का अंदाज क्या होना चाहिए। इसलिए मैंने एक मिसाल बनाई है और वो सखर को इतफाकन मैंने भी बनाई है, जई भाई ने भी कदा सखर से की थी, तो उसकी वजह यह है कि मेरे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट की नहीं आई, इसलिए मैंने सखर को पेश किया है और जो कि मेरा होम टाउन भी है लिहाजा मेरे जहन में उसके हवाले से काफी इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन जो सेंसस के हवाले से इनके पास आई है मेरे पास किसी सेंसस के हवाले से नहीं है, मैंने जो इन्फॉर्मेशन सखर के हवाले से कलेक्ट की है वो मेरी जाती एक्टिविटीज के नतीजे में मेरे पास पहुंची है और उसका मेथड उसका तरीका एक होता है कि प्रॉपर तरीके से जाता है, जैसे ये सेंसस करते हैं बाकायदा शुमारियात वाले जाते हैं वो नंबर लेकर आते हैं उसका डेटा कलेक्ट करने के, एक तो ये तरीका होता है, एक तरीका ये होता है कि मैं इस इलाके में रहता हूँ मुझे मालूम है कि यहाँ 100 घर है और 100 घर में जो है वो एवरेज 8 अफराद एक घर में रहते हैं, 800 शिया आबादी हो गई, एक ये तरीका होता है। तो अब अगर आपके पास प्रॉपर सेंसस किए हुए रिजल्ट नतज हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसे नहीं है तो भी आप इसको फौरी तौर पर अपने यूनिट के जरिए अपने इंफॉर्मेशन टूल्स के जरिए आपके इंफॉर्मेशन टूल्स आपका तंजीमी सेटअप है जिसके जरिए आप उसको सेंसस कर सकते हैं कि मेरे इस इलाके में कितने अफराद ऐसे रहते हैं जो मुझसे हम आहंग हैं जो कम से कम इलेक्शन के दौरान हमारी सपोर्ट करेंगे। सियासी एतबार से कभी भी जीत इसको नहीं कहते कि आप MLA बन के आ गए, ये कोई जीत इसको नहीं है कि मतलब MLA बन गए तो आप जीत गए और अगर नहीं बने तो आप नहीं जीते, नहीं, हमें अपने हदफ की तरफ अगर एक कदम भी आगे को मिल जाता है जाने के लिए तो ये हमारी इब्तदाई जीत होगी, इसमें हमें हर्ट नहीं होना चाहिए, हमें नाउमीद नहीं हो जाना चाहिए कि यार हमारा MPA तो जीता नहीं, हमारा MLA तो जीता नहीं, हम तो हार गए, हार इसको नहीं कहते, लेकिन इसके पीछे जो आपने काम किया होता है दरअसल एक पूरा मोब आपने तैयार किया है इस एक इलेक्शन में हिस्सा लेने की वजह से, यानी अगर आप इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और खुदा न खास्ता आपका कैंडिडेट हार भी जाता है तो भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रेंथ आपने डेवलप किया होगा, आपने बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर्स बना लिए होंगे, आपने एक ऐसी शख्सियत तैयार कर ली जो आपके प्लेटफॉर्म के जरिए इलेक्शन लड़ने के लिए एग्री है। जब ऐसे हालात में कि 20 साल से आपकी तरफ से कोई आदमी फार्म नहीं भर रहा था और अब आप इस हद तक आ गए हैं कि उसको आपने 800 वोट भी दिला दिए, ठीक है, अगर मैं आपको फिगर दिखाऊंगा आप हैरान होंगे कि जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप किसी भी ट्रांसपेरेंसी का पढ़ेंगे तो आप रियली सरप्राइज कि आप देखेंगे कि वो कैंडिडेट जो 75,000 वोट ले रहा है
जो 35,000 वोट ले रहा है उससे पहले वो 3,000 वोट भी ले चुका है। तो ये कोई अगर वो उसी वक्त जब 3,000 वोट लेके चुप हो जाता तो इसका मतलब है वो आगे नहीं बढ़ पाता। लिहाजा सियासी मैदान में कभी भी इस अंदाज से नहीं सोचते कि हमारी नाकामी होगी। जहां आपको रिजल्ट में नाकामी नजर आ रही है कि आपका नाम विनिंग कैंडिडेट के तौर पर, फर्स्ट कैंडिडेट के तौर पर नहीं आया, वहां आप ये क्यों भूल जाते हैं कि वहां आपने एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ पैदा कर ली, सियासी वर्कर पैदा कर लिए, अपनी एक पहचान दे दी और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसको तफसील के साथ अगर बयान किया जाए तो फिर इसी मौजू पर ही बात होगी, मेरी प्रेजेंटेशन रह जाएगी। लिहाजा मैं अपने उन दोस्तों को जो सियासी एतबार से इंटरेस्टेड है इस शोबे में, उनको बिलखसूस जो सेक्रेटरी सियासी आते हैं इस वक्त हमारे, उनको खसूसी तौर पर यह कहूंगा कि पॉलिटिकल एक्टिविटी एक नतीजा तो वो ऐसा होता है जो आपको सामने नजर आ रहा होता है। मसलन आपने रवाबित किए, आपने अपने इलाके में पॉलिटिकल वर्कर पैदा कर लिए, एक तो आपको ये नतीजा नजर आ रहा है कि भाई 5 वर्कर मेरे पैदा हो गए हैं जो पॉलिटिकल तौर पर हमारी वर्क करेंगे इस इलेक्शन में। लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसी चीज, एक ऐसा रिजल्ट जो विजिबल नहीं होता, इनविजिबल होता है, वो ये होगा कि आप जब ऐसी एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो एक माहौल बन रहा होता है। कभी भी सियासी गिनतियों से और काउंटिंग से पूरे नहीं होते, माहौल बड़ा असर डालता है इलेक्शन के रिजल्ट पर। आपके पास अगर 1,000 के करीब वर्कर्स या वोटर्स बन जाए तो समझ लें आप जीत गए। बहुत करीब आ जाता है ऐसा शख्स जीत के जो अपने इलाके में फकत माहौल बना देता है। आप कैसे अंदाजा लगाते हैं कि फलां जीत जाएगा? क्या उसके आपने वोट देखे होते हैं, गिने होते हैं? आपके पास वो इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर आके कहता है कि साहब ये जीत जाएगा, या आप उस दिन पोलिंग स्टेशन में उससे पहले कोई वोटिंग करवा चुके होते हैं? नहीं, एक माहौल को देख रहे होते हैं, पार्टी स्ट्रेंथ को देख रहे होते हैं और अपनी आप वो कन्विंस कर लेते हैं कि फिलहाल जीत जाए और वाकई वो जीत जाए। हालांकि यही चीज अगर आप इसको ऐसा बोलते हैं हम अपनी जबान में कि ऐसी जंग हम कभी भी नहीं जीत सकते जिसमें हार की उम्मीद पहले हो। अगर आपको यकीन हो जाए कि ये जंग हम हार जाएंगे तो फिर कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि इंसान उस वक्त हारता है जब वो अपने आप से हार जाता है। अगर आप पहले ये यकीन कर लें कि नहीं, जिस भी पार्टी का कैंडिडेट आया है अगर ये जीत हमें जीत नहीं सका तो इसे ऐसी कैफियत में मुब्तला कर दूंगा कि इसको यकीन हो जाएगा कि अगर मैं नहीं जीता तो वो जीत जाएगा। आप इस लेवल पर जब अपने आप को कन्विंस करेंगे, मुझे यकीन है कि ये बहुत मुश्किल होता है इलेक्शन के माहौल में, ये चीज डेवलप करना बहुत मुश्किल होती है, हद से ज्यादा मुश्किल होती है। अपने ही हमें आके कहते हैं कि आपका कैंडिडेट कहां जीतेगा साहब, आप क्यों खाम का इतनी मुसीबतों में पड़ रहे हैं, खाम का तकलीफ। लेकिन ऐसे ऐसे जुमले होते हैं जो हौसले को पस्त कर देते हैं, ऐसी ऐसी कैफियत आती है जो हौसलों को पस्त कर देती है। लेकिन एक पॉलिटिकल वर्कर जो होता है वो इतना कन्विंस्ड होता है, वो इस हद तक अपने आप से कमिटेड होता है कि वो इन चीजों को किसी खातर में नहीं लाता, बल्कि उसके जहन में ये होता है कि चूंकि मैं निकला हूं एक खास मकसद को लेकर, मैंने फकत एमएनए का रिजल्ट लाकर एमएनए को जीत कर ये नहीं बताना कि मैं कामयाब हुआ हूं, बल्कि मेरे नजदीक बहुत सारे मकासद, बहुत सारे टारगेट और भी हैं। एक माहौल बनाना है, एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ पैदा करनी है, एक सोच डेवलप करनी है। आज से पहले चले आप देख लें, आज से पहले ऐसी गैदरिंग क्यों नहीं हो रही थी? इसलिए कि हमने कभी सोचा नहीं था। आज अगर हो रही है तो क्या वजह है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आने वाले इलेक्शन में हमारी और ज्यादा, इससे ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ हो। जब मैं एमएनए के लिए सखर में अपने फॉर्म भरे थे तो लोग कहां-कहां से हंसे थे, ऐसे जोर से मैं हंस के नहीं दिखा सकता, मतलब इतनी जोर से हंसे थे कि यार ये क्या कर रहे हो तुम, क्यों हमारी जिल्लत का मकाम करने लगे, सखर में हमारी बेइज्जती करवाओगे, एमएनए की यार तुम फॉर्म भर रहे हो, छोड़ो खुदा के लिए मत करो यार, कौन सा तुम जीत जाओगे। तो मैंने उन्हें कहा था कि आपके नजदीक शायद जीत ये हो कि आप वोट लेकर और एमएनए का नाम सर्टिफिकेट लेकर आ जाएंगे, भाई मैं जीत गया। लेकिन मेरे नजदीक ये नहीं है। मेरे नजदीक ऐसी ज़हनियत पैदा करनी है जो फ्यूडल और रवायती अंदाज में होने वाले सियासतदानों से हटकर वोट देने की आदत अपना ले। अगर ऐसा हुआ तो मैं कामयाब हूं। मुझे 10 साल लगे, 10 साल के बाद जब मैं इलेक्शन में सक्कर सिटी से खड़ा हुआ हूं नायब नाजिम के लिए, तो फकत 2 वोट से हारा। मेरे लिए स्ट्रेंथ थी, ये मेरी ताकत थी। जब अलायंस बना, एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि लीडिंग पार्टी आपने पढ़ा, और एक तरफ तमाम पार्टियों का अलायंस हुआ, तो सखर में ऐसे हुए कि एक पीपल्स पार्टी और उसके अगेंस्ट तमाम पार्टियों का अलायंस, और इन दोनों के दरमियान में, तो रिजल्ट आप जाकर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देख लीजिएगा, वहां रिजल्ट ये हुआ कि मुझसे जो जीता वो पीपल्स पार्टी 13 वोट से, और मैंने लिए तकरीबन कोई 141 वोट, और मेरे ख्याल में 100 वोट या 101 वोट जो है वो तमाम अलायंस ने लिए। मेरी जीत है ये, मैंने एक डेवलप कर लिया माहौल को। तो ऐसा माहौल एक शख्स डेवलप कर सकता है तो क्या वजह है कि अगर मदरसे वहदत मुस्लिमीन जैसी एक ताकतवर तरीन पार्टी जो कि पाकिस्तान में इस वक्त 9 जमातों से मैं मिल चुका हूं उनकी कयादत से, और पाकिस्तान भर की कयादत ने जिस अंदाज में जुमले अदा किए हैं, अगर वो सारे 9 के 9 दोहरा दूं तो इसके लिए इकट्ठा और चाहिए। बहरहाल उनमें से एक इंतहाई सख्त तरीन लीडर ने यह कहा कि मेरी तरफ से जहां भी आपको अपना कारकुन या लीडर मिले तो मेरी तरफ से उनके बारगाह में सलाम अर्ज कर देना कि वाकई आप लोग इस लायक हैं कि जो फैसला कर लेते हैं वो कर दिखाते हैं। तो दूसरे तो आपके बारे में ये सोचे और आप खुद ये सोचे कि हम नहीं कर सकते, तो ये जरा खतरा है। इसको अगर आप हटा लें तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं है कि हम अपने मकासद में अचीवमेंट्स में फुल्ली तौर पर कामयाब हों। जो हमारे अपने हदफ हैं, अहदाफ हैं, उनको हम 100% अचीव कर लेंगे। हदफ और अहदाफ तय करने का मसला है। अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ चलता हूं। पॉलिटिकल डेटा कलेक्शन, सबसे पहले हम इस बात को देखें कि हमारे पास आया डेटा है या ऐसे अंधेरे में हम प्लान कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई डेटा ना हो, हमारे पास कोई फिगर ना हो और हम बैठ के कोई प्रोग्राम मरतब कर रहे होंगे तो यकीनन वो अंदाजों से हो रहा होगा। हो सकता है वो हमारा अंदाजा दुरुस्त साबित हो, लेकिन उम्मीद कभी ये होगी कि इस अंदाजों में हम नाकाम नहीं हो जाए। लिहाजा बेहतर ये है कि पहले आप डेटा कलेक्शन करें, और आपको मालूम होना चाहिए कि डेटा बैंक कहाँ पर है जहां से ये हमें हमारे जो चेक हैं, जैसे बैंक में आप जाते हैं कैश कलेक्शन के लिए चेक देते हैं तो जवाब में आपको अगर अकाउंट में होता है तो कैश मिल जाता है। इसी तरह डेटा अगर वहां होगा और आपने चेक दिया तो आपको डेटा आपको मिल जाएगा, और अगर आपने गलत जगह पर चेक दे दिया तो वो बाउंस हो जाएगा, फिर आपको वो गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बेहतर है कि आपको सबसे पहले ये होना चाहिए मालूम कि मेरा जो चाहिए मुझे डेटा वो है कहां पर। प्रॉपर प्लेसिंग के लिए सोचें कि मेरा डेटा कहां से मिलेगा, कौन सी चीज मुझे कहां से प्रॉपर हकीकी सही मिल जाएगी। या बास ऐसी चीजें होती हैं जो 100% ना मिले लेकिन अगर 95 और 98 और 90s के दरमियान भी मिल जाए तो हमारा काम हो जाता है, हम अहदाफ को तय करने में आसानी महसूस करते हैं। लिहाजा पहली चीज ये है कि आपको डेटा बैंक का पता होना चाहिए कि डेटा कहां से मिलेगा, और वो डेटा आपकी गलियों में पड़ा हुआ है, आपके मोहल्लों में है, कोई बहुत दूर नहीं है। आपका यूनिट अगर चाहे तो वो डेटा उसको साथ वाले घर से मिल सकता है, थोड़ा 2 गलियां दूर जाकर मिल सकता है। वो कलेक्शन करके अपने अगर डिस्ट्रिक्ट को दे रहा है और डिस्ट्रिक्ट उसको कंपाइल कर रहा है तो ये आपके पास पूरे डिस्ट्रिक्ट का डेटा मिल जाएगा। वो डेटा जो आप अंदाजों से बनाते हैं वो आपको रियल हो जाएगा। ऐसी एक्टिविटी करने से डेटा कलेक्शन के दौरान जो आप फकत डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, आपके जहन में ये होता है कि मैं सिर्फ डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं हो रहा। इसके पसे पर्दा एक और माहौल बन रहा होता है, लोग आपको देख रहे होते हैं, कॉम्पिटिटर्स आपको देख रहे होते हैं, दूसरी पार्टीज आपको देख रही होती है कि ये एक्टिविटी कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इस डेटा कलेक्शन के दौरान एक एक साइलेंट माहौल आपके लिए बनता जा रहा होता है, और ये पॉलिटिकल माहौल असर डालता है उस दिन पर जब आप कोई डिसीजन कर रहे होते हैं। तो उनके जहनों में ये होता है, लाजमी नहीं है कि आप जाकर खुद देखें या वो आकर आपको बताएं कि साहब हम आपको बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, हमें हमारा दोस्त अच्छी तरह से नहीं जानता, लेकिन हमारा दुश्मन बहुत अच्छी तरह से जानता है। लिहाजा लाजम है कि हम ये जब एक्टिविटी कर रहे हैं डेटा कलेक्शन की, तो आप न सिर्फ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, एक साइलेंट मैसेज दे रहे हैं दूसरी पार्टी को कि हम जा रहे हैं उस तरफ जिसकी वजह से तुम हमें कमजोर समझे हुए हो। तो ये एक्टिविटी डेटा कलेक्शन की एक असर नहीं लेके चलती, बहुत सारे असरात लेके चल रही होती है। लिहाजा आप इसको यूं समझ लें कि जब आप डेटा कलेक्ट करना शुरू कर देंगे तो आपके पॉलिटिकल वर्कर्स निकलकर आपके सामने आ जाएंगे कि साहब हमारे पास ये चीज इंफॉर्मेशन है, ये हम जानते हैं, ये आप हमसे ले लें, ये आप हमें दे दें। एक तरफ तो आपके पॉलिटिकल वर्कर्स निकल रहे होंगे, दूसरी तरफ आपके कॉम्पिटिटर्स के जहनों में ये चीजें जा रही होंगी कि यार ये लोग कुछ अब कर रहे हैं, तीसरी तरफ आप खुद अपने फैसले करने में जो आप फैसले करने जा रहे हैं उनमें आप बेस जो है वो मजबूत हो रही होगी, आपके पास रियल इंफॉर्मेशन होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप तुक्कों से काम चला रहे हैं, बल्कि हकीकी माना में आपके पास ये चल। तो ये डेटा सिर्फ कलेक्शन इतना बड़ा अमल बन जाता है कि एक पार्टी खुद ब खुद इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। दुरुद पढ़े मोहम्मद वाले तो ये डेटा कलेक्शन, अब ये हमें डेटा मिल गया। डेटा को स्टडी हम किस तरह करें, मैंने अपने तौर पर एक कोशिश की है कि आसान भी हो और कोशिश की है कि ये पॉसिबल भी हो, इतना मुश्किल ना बना दूं कि ये कोई आम दोस्त हमारा कर ही ना सके, और स्टडी करते वक्त वो खुद परेशानी में मुब्तला होकर पता नहीं क्या मुसीबत दे दिए, इतना नहीं किया। इसको बिल्कुल सिंपल हमने बनाया है, और अगर आप देखेंगे तो नेम ऑफ पॉलिटिशियंस 2008 यहां देखें तो आप ये नेम ऑफ पॉलिटिशियन 2008 का जो सियासतदान था जिसने इलेक्शन लड़ी उसका नाम मैंने मिसाल के तौर पर दिया है, लेकिन रियल फिगर है ये खुर्शीद अहमद शाह। ये एमएनए है, इस तरफ ऐसे चलिएगा मेरे साथ, एमएनए है और एनए 199 इसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से है, और सेक्ट ये किस मकतब फिक्र से ताल्लुक रखता है हमें ये समझना लाजमी है। ये साहब देवबंदी है, शिया के साथ रवैया कैसा है इसका तो आप देखेंगे पुअर। अच्छा, रजिस्टर्ड वोट कितने हैं, 2,69,546 ये वोट रजिस्टर्ड है। इस दफा चूंकि मोहतरमा की जो इवेंट हुआ, इसका जो शहादत हुई थी, इस वजह से लोगों का एंटायरली थिंकिंग अंडा चेंज हो गया था, तो इसलिए मैंने वो फिगर इसमें नहीं डाली है, मैंने रवायती फिगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में डाली है। लिहाजा दोस्तों को भी यही कहा है कि इस दफा वाली फिगर को स्टडी करने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा ऐसा नहीं होता। 50% तक चली गई थी वोट कास्टिंग, जबकि वैसे हमारे पास 25-30% वोट कास्ट हो रहा होता है, लिहाजा मैंने इसमें फिगर नहीं रखी इस साल की, आगे चल के फिगर मैंने दी है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। तो आप इसका सेट देखें, देवबंदी बिहेवियर खुशिया पुअर रजिस्टर्ड वोट 2,69,546 शिया वोट जो इसने वोट लिए उसमें शिया वोट कितने, इसमें सॉरी रजिस्टर्ड वोट में शिया वोट कितनी तादाद है, ये 2,69,000 में 60% शिया वोट। अच्छा, ये साहब जो वोट उठाते हैं उसमें कितने वोट इसको मिलते हैं, वो 45% इसको वोट जो मिले हैं इस दफा इन्होंने 1,00,000 के करीब वोट उठाए, तो 72,000 आपने सुना के मैंने नौमान ने उठाए। इन्होंने जो एक लाख समथिंग है, 20,000 है या 15,000 है, उसमें इन्होंने जो वोट लिए हैं वो 45% शिया वोटर है। अगर एक लाख भी वोट लिया है तो 45,000 वोट जो दिए हैं वो शिया ने दिए। दूसरा है जावेद शाह, ये एमपीए है PS5 के। मैंने इस तरह किया कि एक एमएनए और इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो एमपीएस है उनका नाम लिया, फिर दूसरा एमएनए, फिर उसके साथ जो दूसरे दो एमपीएस है उनका नाम लिया, ताकि हम डिटेल समझ सकें। ये आपको इन्फॉर्मेशन आगे चल के क्या काम देगी ये मैं आपको बताऊंगा, पहले दो तीन मैं स्टडी कर लूँ इस तरह ताकि आपको अंदाजा हो जाए। दूसरे जावेद शाह साहब है, ये एमपीए है PS4 के, और इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। ये सेक्ट के एतबार से शिया है और ये इनका रवैया शिया पुअर। ये जब मैं पुअर कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, ये मातम में नहीं आता, नहीं मातम में भी आते हैं, मजलिसों में भी आते हैं, लिहाज भी भिजवा देते हैं, लेकिन जब हम किसी मसाइल का शिकार हो जाते हैं, हमारे सामने दुश्मन खड़ा हो जाता है, तो ये दुश्मन के साथ ही बन जाते हैं। पुअर से मुराद ये है कि एज अ कौमी नेशनल अफेयर्स मुसीबतों में हमारा साथ नहीं दिया जाता, हम वो खुद लड़ रहे होते हैं, हम FIR को खुद भुगत रहे होते हैं, हम उनके फंडों को खुद भुगत रहे होते हैं। हालांकि ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो जो मसाइल क्रिएट कर रहे हैं वो वाकई बदमाश किस्म के लोग हैं और शरीफ तरीन लोग वहां के शिया हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का बिहेवियर। तो ये शाह साहब शिया है और उनका रवैया पुअर है। मुझे किसी की पर्सनली किसी को ओपन करने का मतलब नहीं है, मैं आपको स्टडी करने का तरीका बता रहा हूं कि क्या होना चाहिए। उसके बाद में हमारे पास जाम सैफुल्लाह हारिजी, ये एमपीए है PS3 के, इनका भी ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटरी है। ये बरेलवी है, इनका रवैया नॉर्मल है, मतलब ये न तीन में न तेरह नॉर्मल सम्राट, ना इधर के ना उधर के। तो उसके बाद इनकी जो 40% और ये 30% इन्होंने वोट लिए थे, ये मैं शिया जावेद शाह साहब के फिगर बता रहा हूं। नीचे आप देखेंगे तो ये 20%, क्योंकि ये जो जाम सैफुल्लाह तारे जो साहब जो है नॉर्मल रवैया है, इसमें 20% शिया इस वोटर में 1,19,152, ये 20% शिया वोट है, और जिसमें से 20% में से ये 15% जो इसने वोट उठाए हैं, इस 20 में से 15% नहीं लिए, जो उठाए हैं उसमें कंट्रीब्यूशन 15% शिया है। अगर उसने लाख लिए हैं तो 15,000 शिया, अगर उसने 35,000 लिए हैं तो 15% उसमें शिया कंट्रीब्यूशन। इसी तरह आप नौमान इस्लाम शेख एमएनए, ये 198, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये देवबंदी पुअर, मतलब फिगर आप देखें, एक एक फिगर में पढ़ता जाऊं और उसकी डिटेल देता जाऊं ये जरा मुश्किल होता जाएगा, टाइम लंबा ले जाएगा। लिहाजा आप ये देख सकते हैं, शीट लगाने का मकसद ये है कि आप इसको और देखें, आगे चल के फिर ये जब मैं बात करूंगा तो ये फिगर आपके जहनों में होनी चाहिए, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएं। डेटा स्टडी करने का मेथड हमें आना चाहिए कि हम डेटा को किस तरह से पढ़ते हैं और उसका नतीजा कैसे लेते हैं। उसके बाद आ जाएंगे एमएनएस के खत्म, उसके बाद आ गए साहब ये सेनेटर है हमारे इस्लामुद्दीन शेख, इसका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, ये देवबंदी है, इसका रवैया इस शिया से अच्छा बेटर, इसलिए इसने ओपन तौर पर कई दफा अलम के मामलों में दिगर मामलों में मदद की खुलकर कि भाई ठीक है मैं देवबंदी हूं। अब इसकी एक वजह होती है, आप अगर किसी के जहन को पढ़े तो क्यों वो खौफ की वजह से शिया हमारी मदद नहीं कर रहा होता, तो कहीं में मालूम न हो जाए लोगों को कि यार मैं शिया हूं तो वोट ना मिले, और ये इस खौफ की वजह से बहुत अच्छा रवैया कर रहा होता है देवबंदी के, यार ऐसा ना हो कि यार ये लोग शिया मुझे वोट देना छोड़ दे। इन दोनों के दरमियान एक देवबंदी है जो बहुत पुअर रवैया, उसकी वजह यह है कि वो एक तकबर में मुब्तला है, शिया न दे न दे फलाना दे न दे मैं इतना ताकतवर हूं मैं वो। तो ये रवैये स्टडी जब तक हम खुद ना करेंगे हम नहीं समझ पाएंगे शीट को देखकर, ये रवैये बहुत क्लोजली हमें स्टडी करने की जरूरत है कि आया वो क्यों दे रहा है, ये क्यों दे रहा है, और वो साफ क्यों नहीं दे रहा है शिया। उसके बाद आप आ जाए, ये हमारे नाजम है, अभी आपने नाम भी पढ़ा था नासिर शाह साहब, यहां मैंने दिया है क्योंकि नाजमीन का भी मैंने दिया, नसीरुल्लाह इस्लाम था नासिर शाह, ये डिस्ट्रिक्ट नाजिम थे, अब नहीं है, ये महर ग्रुप में थे लेकिन इस वक्त वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। ये शिया है, इसका रवैया गुड। गुड से मुराद क्या है कि ये न्याज भेज देता है लेकिन खुद नहीं आता, मतलब दो जगह न्याज की कौमी कोई मसला हुआ तो भेज दिया, अपने बेटे को भेज दिया, ऐसे मसला अच्छा है। लेकिन जो हमें चाहिए रवैया कि हमारे मसाइल में हमारा साथ दो, ओके शिया बन के ना सही, एक मुंसिफ बनकर इंसाफ पसंद बनकर हमारा साथ दो, वो लोग ये नहीं देते। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वो पॉलिटिकल जो हमारा काउंसिल है वो तय करेगा। लेकिन फिलहाल हम आपके जहनों में लाना चाहते हैं कि आप इस पैरामीटर्स पे सोचें, आप सोचना शुरू कर दें। फकत किसी को बेजारा वाला शिया देखकर ये ना समझे कि बहुत बड़ा शिया है जी, बड़ा काम किया, और बहुत किसी गरीब शिया को देखकर ये ना सोचे कि यार ये तो बेकार आदमी है, अपना खाने के लिए परेशान है तो हमारा क्या करेगा। ऐसा नहीं होता, सियासी मैदान में ऐसा नहीं होता। ये हमारे पास एक ऐसी रवायत पड़ गई है, मैं जिस वक्त पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया था तो मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, लेकिन वो जमाना ऐसा था कि उस वक्त मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। लेकिन बढ़ते 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 इस हद तक हो गया कि एक तरफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज को जारी रखा, दूसरी तरफ मैंने अपनी मेहनतों को जारी रखा, शक्ल ही बदल गई। मैं अपनी मिसाल इसलिए दे रहा हूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं अभी, आपके जो सवाल होंगे ताकि मैं उसके बेहतर जवाब दे सकूं। पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता, पैसा प्रॉब्लम नहीं होता, मसाइल प्रॉब्लम नहीं होती, ये सब पैदा हो जाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो हौसला, वो वर्किंग का अंदाज, वो किसी के दबाव में ना आना, वो आपका अपना एंथुसियाज्म है या नहीं है। अगर है तो आप आगे चले जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। मासवा इसके के जैसे यहां आजकल हो रहा है कि गोली मार के मार दिया जाए, वो दूसरी बात है, उसका कोई हमें फिक्र भी नहीं है। उसके बाद आ जाए, इसी तरह आप स्टडी करते जाएंगे तो आपको नई सिद्दीकी साहब ये तालका लाजम ये एमपी। हालांकि इससे पहले सखर में कभी भी तालके लेवल पर एमक्यूएम नहीं आई थी, मासवाय पूरी हिस्ट्री में एक दफा एनपीए बना था एमक्यूएम का, और उसकी वजह यह थी कि पीपल्स पार्टी के दो धड़े बनकर आ गए थे, एक पीपल्स पार्टी शीन थे और एक पीपल्स पार्टी थी, तो इस वजह से वो हुए, वरना कभी भी एमक्यूएम सखर से एमपीए की सीट या तालके की सीट नहीं ले सकी। लेकिन मैं बताना यह चाहता हूं कि यहां देखें हिस्ट्री चेंज हो रही होती है, किसी न किसी वजह से कैफियत बदल जाती है। तो क्या वजह है कि कैफियत हमारे हाथों न बदले? देखिए, फकत जीतने और हारने की बात नहीं होती, बल्कि इसमें बैलेंस वोट या वोट जो यानी समझ लें एक शख्स उठा उसने 13,000 वोट लिए और हारने वाले ने 9,000 वोट लिए, अब फर्क कितना हुआ? 4,000 का। वो 4,000 वोट मालूम हुआ उन्हीं में से एक साहब उठे थे जिन्होंने उठा लिया, अगर 5,000 वोट वो इसमें डाल दो तो हारने वाला जीत रहा होगा। तो ये 4,000 या 5,000 वोट, इसको बैलेंस वोट कहते हैं, इसको ये पावर फैसला कर वोट कहते हैं कि ये वो वोट है जो फैसला करने में मदद कर रहा होता है, या हरा देता है या जिता देता है। तो अगर ये वोट भी बन जाए, आप लोग अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप बैलेंस वोट ले आते हैं तो ये आपकी इतनी बड़ी ताकत और इतनी बड़ी कामयाबी होगी कि तमाम सियासी जमातों की निगाहें आप पर होंगी, इसलिए कि आपने वो वोट ले आए हैं जो फैसला कर वोट है। अगर एक पार्टी हार जाती है दूसरी जीत जाती है, दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो 4,000 का है और वो 4,000 वोट आप लेकर आ जाते हैं, तो नेक्स्ट इलेक्शन में ही नहीं बल्कि पूरे टेन्योर में आप पर इस तरह निगाह रखे होंगे कि यार ये लोग अगर जिसका साथ देंगे वो जीत जाएगा, ये जिसका साथ नहीं देंगे वो हार जाएगा। नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन के लिए आपकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगी, आप एक बहुत बड़े पावर की सूरत में नजर आएंगे। लिहाजा आप सिर्फ जीत और हार को फाइनल करके न सोचिएगा और सियासी फैसला न कीजिएगा कि हार जाएंगे तो नहीं उठना चाहिए, जीत जाएंगे तो जरूर उठना चाहिए, ऐसा न कीजिएगा, बल्कि इसके वो तमाम असरात और इसके तमाम वो पैरामीटर्स, उसके मयार अपने जहनों में रखकर पॉलिटिकल फैसले कीजिएगा। ये आपने शीट अगर पढ़ ली तो मैं इसको बदल दूं, उसके बाद आप इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखेंगे। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये साहब ऋषि शाह साहब है। 1997 में 151 ये एमएनए की सीट कहलाती थी, 151, और ये सीट एक ही हुआ करती थी। हमारे पास दो एमएनए नहीं होते थे सरकार में, सिर्फ एक एमएनए होता था। ये कराची का भी इसी तरह डेटा होगा, मलिर का भी इसी तरह होगा, बस्ती का भी इसी तरह होगा, सेंट्रल का भी इसी तरह होगा। अगर आप डेटा को स्टडी करेंगे तो इससे अलहदा कोई नए किस्म का डेटा तो नहीं होगा, इसी तरह के डेटे होंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, कहीं फिगर में तब्दीली होगी, कहीं रिजल्ट में तब्दीली होगी। लेकिन ये जो मैं आपको देने जा रहा हूं वो वे ऑफ स्टडी देने जा रहा हूं, रखिएगा कि मैं आपको इसको स्टडी करने का तरीका बता रहा हूं। ये खुशी देवा शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से 1997 में पहले नंबर पर रहे, 42,459 वोट लेकर। आप देखें 1,00,000 उठाने वाला, जब ये दोनों एमएनए एक हुआ करते थे, यानी अब मैं 98 की भी बात कर रहा हूं और 199 की, दोनों को मिलाकर अगर देखेंगे तो हिस्टोरिकल वो बनेगा 151 97 में 42,000 वोट लेने वाला टॉप पर हुआ करता था, पहले नंबर पर था, जीत गया 42,000 पर। जबकि अगर मैं हारने वाले की भी फिगर दे दूं तो शायद इसके करीब तर होगी 2008, लेकिन जीतने वाले की फिगर 42,400। उसके बाद साहब दूसरा कैंडिडेट, ये टॉप थ्री जो है ना उसको हम स्टडी कर रहे हैं कि टॉप थ्री 1997 में टॉप थ्री कौन थे, ताकि हमारा जहन तो बने, हमें मालूम तो हो कि सियासी पोजीशन है क्या वहां पर। तो टॉप थ्री में आप देखेंगे कि खुशी देवा शाह साहब 42,459 वोट लेकर कामयाब हुए। उसके बाद इस्लामुद्दीन शेख इंडिपेंडेंट 38,369 वोट, ऐसा ही। जबकि इसके बेटे ने 2008 में जो वोट लिए हैं वो 78,000 या 72,000, अभी आपके सामने फिगर जहीर भाई ने दी, लेकिन उस जमाने में खुद वाले साहब उनके लेते हैं वोट 38,369। तीसरा जो था वो अब्दुल मुजीब पीरजादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद थे, यानी शहीद भुट्टो बनवा भुट्टो वाली पार्टी, उन्होंने लिए थे 4,869 वोट। ये टॉप थ्री कैंडिडेट एनए 151 1997 की रिकॉर्डिंग है। ये फिगर जो है ये अंदाजे से नहीं ली है, ये मैंने इलेक्शन कमीशन की फिगर दे रहा हूं। उसके बाद आ जाए 2002 एनए, अब यहां जो एक एनए था दो में तब्दील हो गया, एनए 198 और एनए 199। ये एक एमएनए की सीट को तोड़कर दो एमएनए बनाए गए, एक 198 और एक 199। उसकी कैफियत देखते हैं कि उसमें टॉप थ्री कौन रहे थे, ये देखिएगा 2002 में जब हम देखते हैं तो खुर्शीद अहमद शाह साहब 35,251 वोट लेकर 91 वोट लेकर टॉप पर रहे, 35,291। अब ये वोट लेकर कामयाब हुए। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा है, दूसरे नंबर पर ये अब्दुल्ला असदुल्ला थानवी एमएमए। वो जो मैं कह रहा था कि हिस्टोरिकली कैसे चेंज आती है, अब आप देखें एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जीतती है, जहां पर कोई मजहबी जमात नहीं आती, वहां पर एक सडनली चेंज आता है और वहां असदुल्ला थानवी एमएमए से आते हैं और वो सेकंड नंबर पर बन जाता है इसकी पोजीशन 17,230। अब इसकी पॉलिटिकल वर्थ बनी या नहीं बनी, ये कैफियत बदल जाती है। अब वो साहब 17,230 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। उसके बाद सफी अब्दुल रजाक कोसो एमक्यूएम से हैं, जिन्होंने 14,945 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे, एनए 198 पर 2002 में। आप देख रहे हैं कि एकदम से तब्दीली आई, वो इलाका जो पीपल्स पार्टी का गढ़ था वहां रुत पड़े लोगों का। ایک مذہبی سوچ کے تحت کیسے کنورٹ ہو گیا؟ کیا یہ بلیویبل بات ہے کہ ایک علاقے میں فوری طور پر ایک کوئی انقلاب آیا تھا کہ ایک دم سے مذہبی طور پر سیکنڈ نمبر پر آ رہے ہیں کینڈیڈیٹ اس کے؟ یہ وہ چیز ہے جو سائن ہے ہم سب کے لیے کہ ہاں اگر تبدیلی لانا چاہیں تو گنجائش موجود ہے، شرط آپ کی ایکٹیویٹی کی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اسی 2000 میں آپ نے دیکھا کہ تیسرے نمبر پر ایم کیو ہے، اس کے بعد آتے ہیں 198.9 پر، کیونکہ یہ 151 جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایسا آپ کے علاقوں میں بھی ہوا ہوگا کہ جہاں ایک ایم ایل اے تھا وہاں دو ہو گئے، جہاں دو تھے وہاں تین ہو گئے ہوں گے، یا ایم پی ایس کی سیٹ بڑھ گئی ہوگی۔ اب اس سال میں دیکھتے ہیں کہ ٹاپ 3 کون رہے، یہ دو ایم ایل اے، ایک طرف خورشید شاہ تھا، دوسری طرف کون تھے؟ تو دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں عبدالحفیظ پیرزادہ، یہ پاکستان پیپلز پارٹی، یعنی یہ دونوں ایم ایل اے کی سیٹیں جیتنے والی پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ یہ ذہن میں رہے، یہ کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے صاحب 51,694 ووٹ لیے، 51,694 ووٹ لے کر یہ ٹاپ پر ہوئے۔ اس کے سیکنڈ پر دوسرا کون رہا؟ تاج محمد شیخ، یہ ایف ڈی ایم، یہ ایک الائنس بنی تھی تمام پارٹیوں کی جو میں نے آپ کو ڈسٹرکٹ الیکشن کے حوالے سے بتایا۔ یہ صاحب انہوں نے ووٹ لیے 46,282۔ اب اس کے اور اس کے درمیان اگر آپ فرق دیکھیں تو کتنا ہوا؟ وہی 5,000۔ اب جس نے بھی 5,000 ووٹ لیے ہوں گے وہ وہاں کی ڈیسیشن پاور ہوا یا نہیں ہوا؟ کوئی بہت بڑی محنت کرنی پڑی اسے 5,000 ووٹ کے لیے، کوئی بہت بڑے کروڑوں اربوں میں خرچ کرنے پڑے ہوں گے، بہت ساری تجارت کرنی پڑی ہوں گی؟ نہیں، وہ میرے جیسا پیدل آدمی بھی کر سکتا ہے۔ شرط ہے انتھوزیزم، اس حوصلے کی جو اس کام کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں وہ ہے بیگم زاہدہ عباسی، ایم کیو ایم سے انہوں نے کتنے تیسرے نمبر پر آنے کے لیے ووٹ لیے؟ 3,400۔ یہ آپ دیکھیں کہ بہت چھوٹی تعداد ووٹ کی لے کر بھی ٹاپ 3 کینڈیڈیٹ میں آیا جا سکتا ہے۔ ایک سیاسی ورکر اس طرح سے سوچتا ہے کہ یار اگر 3,000 ووٹ لے کر میں تیسرے نمبر میں آ سکتا ہوں تو کیوں میں بیٹھا ہوں؟ یہ تو دائیں ہاتھ کا کھیل ہے یا بائیں ہاتھ کا؟ اگر اردو میں کیا کہتے ہیں، دائیں کہتے ہیں کہ بائیں کہتے ہیں، وہ اسی ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے، بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے۔ تو یار ایک کھٹکے میں یہ آؤں گا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ لو جی صبح سے کٹھے کٹھے دو چار دوستوں کو اور دیکھو کیسا ان کو ذرا ناخن چلے چباتے ہیں ان کو، وہ کھڑا ہو سکتا ہے، وہ ان کے لیے درد سر بن جاتا ہے۔ آپ یقین کیجئے ان میٹنگز میں میں بیٹھا ہوں جہاں پر ایم ایل اے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، وہ تنکے سے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اتنے بڑے پاور میں نظر آنے والے خوف نہیں کھاتے، اس قدر خوف زدہ ہوتے ہیں کہ اگر ان کو 170 ووٹ کیا کہتے ہیں مائنورٹی کمیونٹی کے نہیں مل رہے ہوتے ہیں تو یہ تڑپ رہے ہوتے ہیں، رات رات بھر ان کو نیند نہیں آتی۔ کل 170 ووٹ پر میں اس کا گواہ ہوں، لاکھوں کی تعداد میں ووٹ لینے والا 170 کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے کہ وہاں سے آئے گا نہیں آئے گا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ہاں یہ سوچ اور یہ فکر اور یہ موٹیویشن اگر ہمارے اندر آ جائے تو کوئی شک نہیں ہے کہ پھر سیکنڈ دین فرسٹ ہم ہی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ آپ نے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پڑھا اور آپ نے دیکھا کہ واقعی اسی طرح ہے۔ یہ کوئی میں نے اپنی طرف سے فکر نہیں دی ہے کہ آپ کو کہانی دینے کے لیے، آپ ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں الیکشن کمیشن کی، یہ اسی طرح کی فکر ہے۔ اس کے بعد اس سے ہمیں یہ طاقت مل رہی ہوتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، وہ لوگ کر سکتے ہیں، کیا ان کی سینگ ہے، کیا ان کا پونچھ ہے، کیا ہے اس کو جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ ہر وہ چیز اور ہر وہ صلاحیت اور ہر وہ انتھوزیزم، ہر وہ طاقت آپ کے اندر موجود ہے۔ میں حقیقت بتاؤں کہ فکری اور نظریاتی طور پر اس وقت کوئی پارٹی پاکستان میں نہیں ہے جیسا فکر اور نظریہ آپ کا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم نہیں جا سکتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم دوسروں کے پیچھے جیے جیے کرتے رہے؟ ہمارے پاس فکر ہے، ہمارے پاس نظریہ ہے، ہمارے پاس اکنامیکل پالیسی ہے، ہمارے پاس امن و امان کی پالیسی ہے، ہمارے پاس لوکل جو قوانین ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس کی پوری پالیسی ہے۔ تو فقط شک शर्त यह है कि हम कितने कन्विंस हैं, हम कितने मोटिवेटेड हैं, ये है मेन मसला, वो नहीं है। उसके बाद आप देखें फिर एमपीए के लिए टॉप थ्री कैंडिडेट्स को स्टडी करने की कोशिश की मैंने कि भाई टॉप थ्री कैंडिडेट्स जो एमपीए हैं वो क्या पोजीशन बनती है, उसके कितने वोट बनते हैं। तो आप हैरान होंगे यकीनन, इतनी छोटी छोटी फिगर्स है कि आप इसको बखूबी समझ सकते हैं कि कोई मसला तो नहीं है यार इतने से वोट लेना। फिर टॉप थ्री में आ जाए, उसके बाद आप टॉप टू में आ जाए, उसके बाद आप जब आप टारगेट वो लेंगे कि यार नहीं हो सकता, नहीं जीत सकते, तो वो जो मैंने जुमला बहुत सारे दोस्त अभी हुए हैं आए हैं, फिर दोबारा दोहरा देता हूं कि ऐसी जंग कभी नहीं जीत सकते जिसमें हार का यकीन पहले हो। हर वो जंग जीती जा सकती है जिसमें यकीन जीत का हो। हार का यकीन आप पहले कर रहे हैं तो उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। आ जाइए देखिए, ये गुलाम कादर भुट्टो साहब ये एमपीए हैं PS3 के, पहले ये PS3 और PS4 हुआ करती थी। आप यहां से लेकर इधर ना देखें, ये सिर्फ दो कालम देखें आप। ये पहले क्या होता था कि ये दो एमपीए हुआ करते थे, इस दो एमपीए की कॉन्स्टिट्यूएंसी को ब्रेकअप करके चार एमपीए बनाए गए। 1997 में ये दो एमपीए हुआ करते थे सखर डिस्ट्रिक्ट में, PS3 PS4। PS3 में गुलाम कादर भुट्टो ने 15,865 वोट लिए थे, समझे, और जबकि रजिस्टर्ड वोट उस जमाने में भी मैंने ऊपर दिए हुए 1,53,000। आप सोच सकते हैं कि 1,53,000 वोट से सिर्फ 15,000 वोट लेकर ये साहब एमपीए बन गए, और हम ये सोचें कि बहुत मुश्किल है एमपीए बनना। ओ बाबा, 1,00,000 का मतलब 1,35,000 वोटर साइलेंट बैठे हैं। वो कौन है जो चुप बैठे हैं, वो कौन है जो वोट नहीं देने आते, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है, वो किस बात पर वोट देंगे। अगर वो खड़े हो जाए तो इससे कई गुना ज्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये देखें, ना उठने की वजह, ना पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की वजह है ये, वरना कोई मुश्किल नहीं है, सखर में इतनी छोटी आबादी नहीं है शिया की, के असगर अली चौहान ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी शीन थे शहीद भुट्टो, 5,280 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। रजिस्टर्ड वोट आपके सामने है, मैं किसी ट्राइबल एरिया का रिजल्ट नहीं पढ़ रहा हूं, सिंध के तीसरे नंबर शहर का रिजल्ट पढ़ रहा हूं, कराची, हैदराबाद, फिर सखर, और वहां की कैफियत है कि वहां वो साहब 5,280 वोट लेकर तीसरे नंबर पर आ जाता है। और इस्लामुद्दीन शेख इंडिपेंडेंट, ऊपर आपने देखा उसने 35,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहा था, उसके बाद आपने देखा उसके बेटे ने 72,000 वोट नौमान इस्लामुद्दीन ने दिए, अभी आपको उन्होंने बताया। अब मैं बताने जा रहा हूं वो बात कि एंथोसिज्म क्या है, क्या 1,3,000 वोट लेने के बाद दोबारा इलेक्शन में नहीं आया, नहीं, अब वो सेनेटर है, इंडिपेंडेंट था, कितने वोट लिए 3,750। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1,53,000 वोट में से सिर्फ 3,700 वोट लेने वाला आज आपका सेनेटर है। क्यों आप बैठे हुए हैं? सवाल यह है कि हम स्टडी कर रहे हैं फिगर को इस तरह से कि हमें फिगर क्या बता रही है और हम कहां खड़े हुए हैं। हम पहले से फैसला कर रहे हैं कि नहीं जीत सकते, नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल काम है। वो बाबा की मुश्किल काम ये है, 1,35,000 वोटर जहां खामोश हो, वहां तो बहुत बड़ा एक जैकपॉट है, पॉलिटिकल पावर के लिए एक बहुत बड़ा जैकपॉट है। आप वहां मुश्किल हो सकती है जहां 50%, 65%, 70% वोट कास्टिंग हो, वहां बहुत मुश्किल है काम करना। लेकिन जहां 15% हो, 10% हो, 30% हो, 25% हो कास्टिंग रेशियो, वहां तो बहुत आसान है काम करना, वहां तो बहुत मौके हैं काम करने के लिए। शर्त यह है कि हमारी मोटिवेशन कहां है, हम अपने आप को जहनी तौर पर कितना तैयार कर चुके हैं। इसी तरह अगर आप स्टडी करेंगे PS4 को, PS4 सैयद नासिर शाह ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, फिर आपने देखा कि वो मार ग्रुप में चले गए, फिर आपने देखा कि अभी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। ये जो फ्लाइंग्स हैं इधर से उधर, उधर से इधर से उधर, ये आपको क्या बता रहे हैं? ये बता ही रहे हैं कि लोगों ने फकत सीट हासिल करने को मकसद बनाया है और आप वो हैं जो फिक्र को लेकर चल रहे हैं। आपका हक ज्यादा बनता है कि आप आ जाए आगे, क्योंकि आप किसी सीट हासिल करने के लिए नहीं है बल्कि किसी खास मकसद को हासिल करने के लिए बढ़ रहे हैं। तो आपका पावर और आपका एंथुसिएज्म और आपकी मोटिवेशन उनसे ज्यादा है। लोग तनख्वाह के लिए काम कर रहे होते हैं लेकिन आप जुलूस की हिफाजत तनख्वाह के लिए नहीं कर रहे होते हैं। कितना फर्क है पुलिस वाले की हिफाजत में और एक हमारे किसी मोमेंट की हिफाजत करने में, इतना ही फर्क है पॉलिटिकल थॉट्स में। कंपैरिजन और सोचने की बात है, जिस दिन आपने सोचना शुरू कर दिया उस दिन हम इंशाल्लाह अपने हदफ तक पहुंचाएंगे। अब देखिए साहब, ये जो नासिर शाह साहब है 19,038 वोट लेकर, और इसके लिए भी मैं आपको बता दूं 1,24,000 वोट उसमें रजिस्टर्ड है, 19,000 वोट लेकर एमपी है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आते हैं उसने, वो आए ये ताज मोहम्मद शेख, फैक्ट्रियां बर्बाद कर दी इसने, 65 जो इसके पास है पेट्रोल पंप है सिंध में जो लगा चुका है वो गांव पर, अब वो जरा तब्दील में चला गया होगा सहीदा से। हाँ ये रहा है, इसने 9,341 वोट, आप अंदाजा करें करोड़ों रुपए खर्च करने वाला ये शख्स है जो 9,000 वोट ले रहा है, लेकिन छोड़ा नहीं इसने, लड़ता आ रहा है उस वक्त से लेकर आज तक। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो हैरत अंगेज बात, जावेद शाह, ये जावेद शाह वही है जो लास्ट में आपने देखा कि एमपी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो नहीं, ये जावेद शाह दूसरे शीन भाई वाले, ठीक है, ये जावेद शाह शीन भाई, शीन भाई का मतलब एसपी शहीद पुत्र, इसके 4,232 वोट, 1,00,000 में से 4,000 वोट लेकर आप देखें तीसरे नंबर पर भी आ रहा है और एक पॉलिटिकल फिगर बन रहा है, क्योंकि 9,000 में अगर ये 4,000 डाल दिए जाए तो ये कितने बन जाएंगे, 13,000, कोई 6,000 का फर्क आ जाएगा, और ऐसी फिगर छोटी छोटी बहुत सारी है। अब अगर रिजल्ट को देखकर आप शीट को देखकर सोचें कि ये जो छोटे छोटे फिगर्स हैं अगर इनको हम साथ मिला दें और अपना वोट भी इसमें प्लस कर दें तो हमारी पोजीशन इस अब्दुल खास जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें क्या होता है, ये रिजल्ट स्टडी करने की जरूरत है। आप अपने अपने एरिया की शीट का आपको मिल जाएगी, आप एमए और एमबीए की यानी बीएस की अगर शीट उठाएंगे उस वेबसाइट से भी मिल जाएगी तो आपको मिल जाएगी और आप रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे, यार ये छोटी छोटी फिगर अगर हम ये करें तो कहां से कहां पहुंचाएं। अब आइए, ये तो था एक स्टडी करने का तरीका जो मैंने आपको फिगर के तौर पर साबित करके दिया कि फिगर तो इतना बड़ा मसला नहीं है, मोटिवेशन इज द प्रॉब्लम। मसला हमारा मोटिवेशन का है कि हम कितने मोटिवेटेड हैं, हम कितने तैयार हैं, हमारे पास टूल्स कहाँ हैं, टूल्स कहाँ हैं, हमारे पास डेटा बैंक्स कहाँ पर हैं, हम वहां पर पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं। उसके बाद एक और लेक्चर है जब इंशाल्लाह चलेंगे तो इलेक्शन के मराहल के लिए मैंने तैयार किया है, फिलहाल सिर्फ डेटा कलेक्शन पर चले। डिटेल ऑफ शिया कैंडिडेट्स यूसी वाइज इन तालुका, ये भी जरूरी है। अगर हमें ये पता चल जाए कि यहां पर काउंसलर जो थे वो जीते हुए चाहे हारे हुए शिया कौन कौन थे, तो आपके पास पॉलिटिकल एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हाथ आ गई, क्योंकि वो खुद इलेक्शन लड़ा है, लोगों को कन्विंस कर चुका है, अपने वोट के लिए वर्किंग कर चुका है, लिहाजा एक एक्सपीरियंस्ड आदमी आपको मिले। चाहे वो हार गया था या जीत गया था, दोनों सूरतों में बाबा वो एक्सरसाइज से तो गुजरा ना, उसने ये काम तो किया ना, अब आपके पास एक तजर्बेकार शख्स मिल गया, आप उससे फायदा उठाए। इसको स्टडी करने का तरीका वही कि आप जब डेटा कलेक्ट करेंगे तो माहौल बनेगा, लोगों तक आपकी रसाई होगी, लोगों तक रसाई होगी आपके ताल्लुकात बनेंगे, आपका उनके साथ बाहर रवाबित पैदा होंगे, और यही पॉलिटिक्स है कि आपके ताल्लुकात और आपके रवाबित हर शख्स के साथ, वो बाद में फिर किसी डिटेल में। अच्छा यहां देखें नेम ऑफ تعلقہ اینڈ ٹوٹل یو سیز. میرا تعلقہ ہے, آپ نے ظہیر بھائی نے کہا چار تعلقے لیکن پانچ تعلقے سکھر میں, یہ کوئی الیکشن کمیشن سے غلطی ہوئی تھی, آپ جا کر دیکھ لیجیے گا. ٹوٹل ڈسٹرکٹ, یہ ٹوٹل ڈسٹرکٹ ہے, اس کو ابھی اسٹڈی نہیں کرتے, یہ کیا نام بڑھیے گا, یہ سکھر ون اور ٹوٹل یو سیز ہے 11. 11 یو سیز ہے ٹوٹل سکھر ون میں. اس میں یو سی ناظم 11 میں سے ایک شیعہ تھا. اب دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز نے آپ کو کیا اہمیت دی ہوئی ہے, فگر آپ نے دیکھی, ووٹ آپ نے دیکھے, اور آپ اپنی حیثیت دیکھیے گا. 11 یو سیوں میں, یہ سکھر سٹی ہے, مین سٹی جسے وہ یہ ایریا میں پڑ رہا ہے, وہاں ایک ناظم شیعہ, دو نائب ناظم شیعہ اور 30 کونسلر شیعہ جو جیتے ہوئے تھے. یہ سکھر سٹی کی بات کر, اس کے بعد 11 یو سیز کی یہ پوزیشن, اس کے بعد سکھر 2 ٹوٹل یو سیز 9, جس کو پہلے اولڈ پڑھ رہے تھے پھر نیو پڑھ رہے تھے, تو یہ وہی ہے. اس میں ٹوٹل یو سیز 9, اس میں یو سی ناظم 1, نائب ناظم 1 اور 25 کونسلر شیعہ تھے. کیونکہ یہ اسٹم پڑا ہوا ہے ہمارے پاس, یہ لوگ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, اب ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا. ایک سسٹم کے تحت تو تھا لیکن اس کے بعد انہیں نہیں پوچھ رہا, بالخصوص پھر ہارے ہوئے سے کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے کسی کی. لہذا میں پڑھ سکھر کی فکر رہا ہوں لیکن حقیقت ڈسکس کراچی ملیر آپ کے جام شور یا آپ کے سینٹرل یا ملیر اس طرح سمجھ لیں کہ میں ڈسکس کر رہا ہوں, صرف فکر بدلی ہوئی ہے, بات ہوئی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یو سی 9 ہے تالکا 2 میں, اور ایک شیعہ ناظم, ایک نائب ناظم اور 25 کونسلر تھے میرے اس پورے. اس کے بعد صالح پٹ, یہ آپ کو اطلاع دے دوں کہ صالح پٹ کی 99% اگر میں کہوں تو جھوٹ نہیں لیکن 90% کہہ دیتے ہیں کہ آبادی شیعہ ہے, 90% وہاں صالح پٹ میں شیعہ ہے. وہاں پر یہ پوزیشن بنتی ہے کہ ناظم 3, یو سی ٹوٹل 3 ہے, ٹوٹل یو سی 3, ناظم 3 شیعہ, 2 نائب ناظم شیعہ اور 20 کونسلر شیعہ, یہ پوزیشن صالح پٹ کی. اس کے بعد کنواٹی, ہمارا کم سے کم شیعہ آبادی والا, جہاں آپ نے 20 اور 25% دیکھا تھا کہ شیعہ آبادی, لاسٹ فگر جب آپ نے پڑھی ہوگی شیل پر, تو 20 سے 25% شیعہ آبادی والا یہ ایریا ہے. اس میں کیا تھا, اس میں 11 یو سیز تھی پنواٹی میں, 11 یو سیز, اس میں سے 4 لازم شیعہ, نائب لازم کچھ بھی نہیں, 45 کونسلر شیعہ. سوری یہ پنوا صالح پٹ, 3 جو ہے وہ ناظم شیعہ, 2 نائب ناظم شیعہ اور 20 کونسلر شیعہ صالح پٹ میں, 3 یو سی میں. اس کے بعد پنوا کے, یہ کم سے کم والا ایریا, یہاں پر آپ نے 20-25% دیکھے, یہاں صرف 5 شیعہ کونسلر ہیں, نائب ناظم اور ناظم بالکل نہیں ہے. اس کے بعد آتا ہے روڑی, روڑی مشہور شیعہ ایریا ہے, اگر 70-60% کہا جائے تو برا نہیں کہ اس روڑی کی آبادی شیعہ آبادی ہے. وہاں پر 4 ناظم تھے, نائب ناظم کچھ بھی نہیں, اور 45 جو ہے وہ ہمارے پاس وہاں پر کونسلر تھے شیعہ. یہ شیٹ دیکھنے کے بعد ہمیں اپنا اسٹف نظر آتا ہے کہ ہم کہاں ہیں اور کس پوزیشن میں کھڑے ہیں, لیکن یہ سب تب ہوگا جب ہمیں یہ پتا ہو کہ کتنے شیعہ ہیں, کتنے ناظم ہیں, کتنے نائب ناظم ہیں, کتنے کونسلر تھے, ان کے ورکرز کون تھے, ان کے ایریاز کون تھے, ان کی رہائشیں کہاں تھی, اس طرح کا پورا ایریا آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا. صرف یہ شیٹ آپ نے تیار کر لی تو آپ کے سامنے پورا ایریا آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا کہ کس کیفیت میں اس وقت ہم کھڑے ہیں اور فردر ہمارا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے. اس کے بعد آتی ہے ریکمنڈیشن. اب ہم پولیٹیکل سیکرٹریز ڈسٹرکٹ سے کہتے ہیں کہ ریکمنڈیشن دیں, پولیٹیکل پرسنالٹیز کون کون سی ہیں اور آپ کی ریکمنڈیشن کیا کیا ہیں, آپ کس کس کو ریکمنڈ کرتے ہیں. نیکسٹ اس کے لیے نیکسٹ کینڈیڈیٹ. اب یہاں ہم نے 5 پوائنٹس دیے ہوئے ہیں कि हमने कहा कि ये पॉइंट्स पर आप लोग बोले, आप लोग बोलने से पहले यकीन सोचेंगे, सोचने से पहले थोड़ा बहुत एक्टिविटी करेंगे, इधर उधर देखेंगे। ये भी एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, एक्सरसाइज है, जिसको जरूर करना चाहिए ताकि एक जहन डेवलप हो, सोच फिक्र पैदा हो सियासी। मैंने अपने तौर पर छोटी से लेकिन कोई बड़ी कहानियां नहीं लिखी, मैंने सिर्फ तीन तीन जुमले लिखे हैं, चार चार जुमले लिखे हैं और भेज दिए। क्या पढ़ के सुना देता हूं ताकि ये जहन में आए कि हमने करना क्या है। रूटीन पॉलिटिकल एक्टिविटीज मस्ट बी एक्सरसाइज एट डिस्ट्रिक्ट सखर एज टू पार्टिसिपेट इन कमिंग इलेक्शन। क्या करना चाहिए? सपोर्ट पीपुल अगेंस्ट देयर डोमेस्टिक और लोकल प्रॉब्लम्स, पार्टिसिपेट इन देयर सोशल इवेंट्स एंड अरेंज पॉलिटिकल प्रोग्राम्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग द NWM पॉलिटिकल पॉलिसीज। कि हमें लोगों के उनके जो सोशल इवेंट्स हैं, शादी हुई, ब्याह हुआ, उनके जो मसलन कोई फौजगी हो जाती है, कहीं कदिया हो जाता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं किसी के बच्चे की कोई खास देर है, हमें उनमें जरूर शामिल करना चाहिए। और उनके जो सोशल इवेंट्स हैं उसमें या प्रॉब्लम्स हैं डोमेस्टिक, खास तौर पर हम बात होता बड़े पैरामीटर में रहकर काम करते हैं, एक दायरा बनाते हैं, इससे बाहर नहीं जाते। वो क्या होता है, देखें ये आपके साथ हो तो भी बुरा है, तो आप किसी और के साथ कर रहे हैं तो ये और ज्यादा बुरा है। वो ये कि हम मजहबी लोग बन जाते हैं, भाई मातम मजलिस का कोई प्रॉब्लम है तो हम बैठे हुए, लेकिन अगर कोई जाती मसला है तो सही हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है, ये उसका जाती मसला है। वो भाई जाती मसला नहीं है। लोग फिर ये करेंगे कि माता मजलिस में आपके साथ ताल्लुक रखेंगे और जाति मफाद आपके लिए फिर दूसरी पार्टियों के पास जाएंगे। लाजम है कि उसके जात में भी आप इन्वॉल्व रहे। यार बच्चे की तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल भी आप ले जाएं, डॉक्टर को फोन भी आप कर रहे हो, उसको प्रॉब्लम इकोनॉमिकल हो तो उसके हल भी आपके पास हो, सोशल प्रॉब्लम हो तो हल आपके पास हो, मोहल्ले वाला तंग कर रहा हो तो हल आपके पास हो। ये लोग कब आपकी तरफ आएंगे? ऐसे नहीं आएंगे लोग कि आप मजहब में आ रहे हैं, मातम में आ रहे हैं, ठीक है वो फिर आपके साथ सिर्फ मातम में आएंगे, मजलिस में आएंगे और इन तरह के इवेंट्स में आएंगे, लेकिन जब इलेक्शन का जमाना आएगा तो वो उस पार्टी के साथ खड़े होंगे जो बाकी मामला में उसके साथ खड़ा। तो ये डिवीजन मत पैदा करें, आप उसके पर्सनल इवेंट्स में जाए, आप उसके डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स में उसके साथ मददगार बने, तब जाकर एक पॉलिटिकल वर्कर तैयार होगा, तब जाकर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपके ऊपर लोगों का, फिर लोग आपकी तरफ भी देखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जाति मसाइल के लिए वो फलां के पास जाए और मजहबी मसाइल के पास आपके पास आए, तो फिर इलेक्शन के वोट देते वक्त उसके जहन में भी ये डिवीजन मौजूद होते हैं और लोग ज्यादातर अपने मफादात को अहमियत देते हैं। मजहब तो उनका जैसे जैसे भी हो जाएगा, भाई आपके जुलूस में नहीं आए तो जुलूस में चले जाएंगे, ये कौन सी बात हुई, आपके मजलिस में नहीं आए तो मजलिस में चले जाएंगे, हमारा मोहरम तो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वोट नहीं दिया, उसको वोट दिया तो आप देखो, लिहाजा उसके साथ की मामला में आप मतलब मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व होंगे। ये खसूसन पॉलिटिकल जो सेक्रेटरीज हैं मैं उनके लिए कह रहा हूं और मरकज को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। उसके बाद आता है बिफोर इलेक्शन वी हैव टू कम इन टू क्लोज कॉन्टेक्ट विथ मेजर शिया पॉपुलेटेड एरियाज। हमें इलेक्शन से पहले ऐसे एरियाज के ऊपर बिल्कुल झपट पड़ना चाहिए, जैसे बासर या माना है कि भटकाया हुआ, तो झपट पड़ने से मतलब आप खूब समझते हैं कि मैं उसमें जोर पैदा करना चाहता हूं गुफ्तगू में, कि आप झपट पड़े उसके ऊपर, ऐसे एरियाज के ऊपर जहां बहुत मेजर पॉपुलेशन है शिया की, वहां जाए और क्लोज कॉन्टेक्ट विद मेजर पॉपुलेशन एंड टू सॉल्व देयर कोर इश्यूज। उनके जो कोर इश्यूज उस वक्त चूंकि रेनी विक्टम्स थे, बारिश की थी, दूसरे मसाइल थे, तो इसलिए उनका जिक्र टाइम ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उसके एंड टू डेवलप पॉलिटिकल वर्कर्स एंड वोटर्स, दो काम जरूर करें, एक पॉलिटिकल वर्कर पैदा करें, एक पॉलिटिकल तौर पर आप वोटर पैदा करें, आप अपने साथ लोगों को मिलाएं। लोग इलेक्शन से पहले नहीं उठे कि भाई ये एरिया जो है ये तो सीधा सीधा जा रहा है मेरे से मतलब मुस्लिम, ये सोच पैदा करें और ये माहौल बनाने से होता है। लोगों को टांगे पर अनाउंस नहीं करवा रहे होते हैं कि भाई फिलहाल लोग हमें वोट देंगे, ऐसा नहीं होता, एक माहौल क्रिएट होता है, साइलेंट मैसेज होता है, और वो साइलेंट मैसेज वो उसी तरह होता है जैसे आपने कहा ना, जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि जब आप उसके साथ कॉन्टेक्ट करेंगे, आप उनसे इंक्वायरीज करेंगे, आप उनसे डेटा मांगेंगे, ऑटोमेटिक उन लोग सुनेगा ये तो ये क्या तौर पर हासिल करेंगे पोलिटिकल वर्कर्स एंड मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ सकर इज स्टिल साइलेंट। जो मैं कह रहा था कि बहुत बड़ी तादाद जो है वो सकर के अभी तक था, ये क्यों है? एंड डिसएग्री टू सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी और पर्सन, यानी वो किसी पार्टी से भी नहीं है, किसी शख्स से भी नहीं है मुतफिक। वो जो मैंने बताया कि 1,35,000 के करीब, 1,33,000 के करीब लोग खामोश बैठे हुए हैं। वो क्यों खामोश बैठे हुए हैं? वो क्यों नहीं आपके साथ हमदर्दी पैदा कर सकते? छोड़ दे सबको, अगर एक मोतदल सुनी और शिया आपके साथ मिल जाए काम हो गया आपका। 1,00,000 में इतनी बड़ी तादाद उनकी होगी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक। वी हैव टू मोबिलाइज देम थ्रू क्लोज मॉनिटरिंग टू दोज एरियाज वेयर द कास्टिंग रेशियो इज पुअर और लो, स्पेशली शिया पॉपुलेटेड एरियाज। यानी हमें एरियाज पर तवज्जो रखनी चाहिए, बहुत ही गहरी नजर रखनी चाहिए जहां बहुत बड़ी तादाद शिया की रहती है और वो वोट नहीं कास्ट कर रही होती या बहुत कम कास्ट कर रही होती है। शिया वोटर, शिया वोटर्स क्या है इस वक्त जवाब देंगे यकीन, लिहाजा इसमें यह लिखा हुआ है कि मैंने पहले ही कि शिया वोटर्स आर फुल्ली कन्विंस्ड पॉलिटिकल टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज, शिया वोटर आर फुल्ली कन्विंस्ड टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज एज नो एनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज वर एक्सरसाइज ऑन शिया बेस्ड पॉलिटिकल ग्राउंड्स। सच कह रहा हूं कि पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर जो कि नहीं बनती थी हमने, इसलिए तमाम शिया हजरात जो है वो मोटिवेटेड है, उनका जहन बना हुआ है किसी दूसरी पार्टी की तरफ, हमारी तरफ अभी जहन नहीं है। लेकिन आज ये पोजिशन नहीं है, ये फॉर्म मैंने 6 महीने पहले भरा था, लेकिन आज ये पोजिशन नहीं है। मैं खुद इससे मुनकर हो रहा हूं क्योंकि डेली तब्दील होती है पॉलिटिकल पोजिशन, आज ऐसी पोजिशन नहीं है, और बड़े ताकत और फख्र के साथ कहता हूं कि नहीं है ऐसी पोजिशन, ये पहले की बात है। ओके, अब हमसे सवाल किया जा रहा है कि हम सिंध की पॉलिटिक्स में किस तरह दाखिल हों। ये इब्तदाई मरहला है, आज ऐसा नहीं है, आज हम नेशनल लेवल पर पॉलिटिकल पार्टी बन चुके हैं, लिहाजा इस स्तर को पढ़ने की मुझे कोई जरूरत नहीं। हम दाखिल हो चुके हैं, हमें तस्लीम किया जा चुका है, न सिर्फ ये कि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से बल्कि आवास से हम बैठे हुए हैं ये गवाही देंगे कि हम तस्लीम शुदा एक पॉलिटिकल पावर हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।